कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 13। सर्व कर्माणि मनसा सन्यासस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सन्यास का अर्थ क्या है? यहाँ पे मानसिक सन्यास के बारे में भगवान बता रहे हैं। मानसिक सन्यास का अर्थ है कि जो भौतिक हम अपनी इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं उनमें उनमें आसक्त नहीं होना। जो शरीर की क्रियाएं हैं वो प्रकृति के द्वारा क्रियान्वित होती हैं और उनमें आसक्त न होना मानसिक रूप से, ये सन्यास है। जब तक हमारे पास कुछ भौतिक होगा नहीं, वस्तु होगी नहीं, तो मन के सन्यास से कोई अर्थ नहीं है। इस श्लोक में शरीर की उपमा एक सिटी यानी एक नगर से की जा रही है। कारण क्या है? इससे पहले शरीर की उपमा कपड़े से दी गई थी। कपड़े हम परिवर्तित करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शरीर की उपमा शहर से इसलिए की जा रही है क्योंकि शहर में आके व्यक्ति काफी समय तक रहता है। भले ही शरीर परिवर्तित होता रहता है, लेकिन फिर भी हम शरीर में काफी समय तक रहते हैं। 70-80 साल तक तो कम से कम रहते हैं। और जिस प्रकार से एक जो आपका शहर होता है उसमें बहुत सारे गेट होते हैं जिसमें अंदर से सामान आता है बाहर जाता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के जो 9 छिद्र हैं इससे इसके द्वारा हम अपने शरीर के द्वारा इन गेट्स के द्वारा आँख कान नाक इत्यादि जो के द्वारा हम इंद्रियों के द्वारा अपने चित्त में इनपुट लेते हैं। इनपुट का अर्थ हो गया कुछ संस्कार ग्रहण करते हैं। तो इनसे आसक्त ना होकर, इन संस्कारों से आसक्त ना होकर के आत्मा के स्वरूप के रूप में अपने आप को अवस्थित करना कि मैं आत्मा हूं और शरीर की क्रियाओं से मेरा संबंध नहीं है, इसके द्वारा व्यक्ति भौतिक जगत के कार्यों से निरासक्त रहेगा। नहीं तो लोग प्रायः लोक व्रत का पालन करते हैं। प्रायः क्या इच्छाएं होती हैं? मेरा बच्चा पढ़ाई कर ले, मैं नौकरी में आगे बढ़ जाऊं, मैं और पैसा इकट्ठा कर लूं, मैं भोग कर लूं। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं इंद्रियों की क्रियाएं हैं और इसमें हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाने के कारण कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, इन सब क्रियाओं में हम बहुत आसक्त हो जाते हैं और जिसके लिए वास्तविक रूप से शरीर मिला है भगवत भजन के लिए उसको हम भूल जाते हैं। तो व्यक्ति को सुन करके समझने का प्रयास करना चाहिए और इन क्रियाओं से जो इंद्रियों की क्रियाएं हैं उनमें बहुत आसक्त नहीं रहना चाहिए। और इस चीज को प्रभुपाद यहां प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि प्राकृतिक गुणों के द्वारा ये क्रियाएं होती ही रहती हैं। हमारा खाना कैसे हजम हो रहा है हमको पता नहीं, और हम सांस कैसे लेते हैं हमको पता नहीं, सब भगवान की योजना के, भगवान के मैनेजमेंट, भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है। तो इनमें आसक्त होने के बजाय व्यक्ति, और अपने आप को शरीर मानने के बजाय व्यक्ति अपने को स्मरण करे, समझने का प्रयास करे गीता के द्वारा, भगवद गीता के द्वारा, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, मैं इस जगत का हूं ही नहीं और इस जगत में रहने के लायक भी नहीं हूं। आत्मा के लिए जगत बिल्कुल भी फॉरन है, बिल्कुल कतई फॉरन है। हमें यहाँ बिल्कुल रहने के हमें योग्यता नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती पड़े हुए हैं यहाँ पे। कृष्ण अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। क्यों कष्ट पाता है? क्योंकि हम अपने आप को आध्यात्मिक चेतना से वियुक्त कर देते हैं, भगवान की चेतना से, भगवत सेवा से वियुक्त कर देते हैं। इसलिए जो इंद्रियों का तर्पण है, इंद्रियों का भोग है, उसी में अपने सुख को मानते हैं और इंद्रियों का सुख ही हमारे दुख का जननी है। इसको भगवान भगवद गीता में अन्यत्र समझाते हैं। तो जब हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो हमारे जो नियमित कार्य हैं शरीर के वो तो हम करते ही हैं, करने ही होते हैं, लेकिन भक्त उन कार्यों को भगवान से जोड़ देता है। तो ये चीज हमने पहले भी समझाई है, तो उसको हम नहीं समझा रहे, लेकिन अपनी क्रियाओं को सीखना चाहिए भक्तों के संग में आकर के कैसे मैं अपनी सामान्य क्रियाओं को भी भगवान से जोड़ लेता हूँ, जोड़ सकता हूँ, और उसके द्वारा उन क्रियाओं को करते हुए भी मैं आध्यात्मिक स्तर पर रह सकता हूँ। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। देह का बंधन आप जानते ही हैं, इस वजह से है कि व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं होती हैं, और भौतिक इच्छाएं होती हैं क्योंकि व्यक्ति भौतिक कार्य करता है। तो अगर उन्हीं कार्यों को कृष्ण को समर्पित कर देगा तो धीरे धीरे करके भौतिक इच्छाएं समाप्त होने लगेंगी और व्यक्ति अपने स्वरूप के प्रति बहुत जागृत रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति जब स्वप्नावस्था में होता है तो स्वप्नावस्था में वो बाह्य जगत में क्या हो रहा है उसके प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं रहता, और जैसे वो जग जाता है तो स्वप्नावस्था के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं रहता। ऐसे ही जैसे जैसे हमारी जागृति इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होगी, वैसे वैसे हम लोग आध्यात्मिक कह सकते हैं आध्यात्मिक सत्यता या आध्यात्मिक जीवन के प्रति और सजग होते चले जाएंगे। ये हरे कृष्ण मंत्र एक्चुअली बहुत दिव्य है और जादुई है। जैसे जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं और अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करते हैं, भगवद गीता को सुनने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो अधिक अधिक प्रकट होने लगता है और हम इस जगत की वस्तुओं से निराशक्त अपने आप ही होने लगते हैं। जैसे व्यक्ति स्वप्न से जागता है तो अपने आप ही स्वप्न की अच्छी या बुरी परिस्थितियों से वो विलग हो जाता है, वियुक्त हो जाता है। अतः जो ही कोई ही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। मैंने इसी बात को समझा रहा था अभी। ऐसे सही में जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है वह नौ द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये थोड़ा समझना चाहिए क्या कार्य प्रणाली में अंतर होगा। क्रियाएं प्राय वही रहेंगी लेकिन सब क्रियाएं कृष्ण के संबंधित कृष्ण केंद्रित होती चली जाएंगी। ये हमने पहले भी समझाया था कि भक्ति में आने के बाद एक प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करने से हमारा जीवन केवल पुण्य जीवन नहीं रह जाएगा, पुण्य जीवन भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हो सकता है, लेकिन हमारा जीवन कृष्ण केंद्रित हो जाता है और हम बहुत जल्दी मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ने लगते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है एक्चुअली। संयमित जीवन का अर्थ भी क्या है? संयमित आप समझते हो कि जब हमारी इंद्रियां भोग करना चाहती हैं तो वहां आप खींच लेंगे उसको, और जब इंद्रियों का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करने को मिलता है तो वहां पे अपनी इंद्रियों को छोड़ देंगे। हाँ भाई तुम ये काम कर सकते हो, भगवान का प्रसाद है खा सकते हो, भगवान के बारे में बोलना है बोल सकते हैं, भगवान का दर्शन करना है कर सकते हैं, लेकिन वस्तुओं का भौतिक वस्तुओं का दर्शन करना है भौतिक भोग करना है तो उसको हम करने नहीं देंगे। इस प्रकार से हम सुखपूर्वक इस शरीर में रह सकते हैं। नव द्वारे पुरे देही हंसो लीलायते बहिः वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर नौ द्वारों, दो आंखें, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त हैं। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री में हैं तो आप उस फैक्ट्री को देख रहे हो और उसमें बहुत सारी क्रियाओं को होता हुआ देख रहे हो, लेकिन हम अगर उस फैक्ट्री के मालिक नहीं हैं तो हम उससे निर्लिप्त रहते हैं, उसके लाभ हानि से निर्लिप्त रहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान इस शरीर में बिल्कुल निर्लिप्त हैं, वस्तुतः वही उस शरीर के मालिक हैं, फिर भी उनको शरीर से कोई आसक्ति नहीं है। इसी प्रकार से भक्त भी भगवान की भक्ति करते करते शरीर की आसक्ति से बिल्कुल छूट जाते हैं, और ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि जैसे जैसे भगवान का प्रेम बढ़ने लगता है व्यक्ति अपने आप ही आहार निद्रा भय मैथुन के सुख से अपने आप ही ऊपर उठ जाता है, खाने की इच्छा नहीं करती है, खाने की इच्छा कम हो जाती है, सोने की इच्छा कम हो जाती है, बल्कि कृष्ण की सेवा की लालसा बढ़ती चली जाती है। तो इस उदाहरण को मैं फिर से समझाऊंगा। कार में जब व्यक्ति बैठा रहता है तो कार से अपनी पहचान नहीं करता है। उसकी इच्छा क्या होती है, उसका चित्त कहाँ होता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, वहां जाके मैं क्या करूंगा। हम सभी लोग उस बात का अनुभव करते हैं जब हम कार में बैठते हैं, और हमें ये भी चेतना रहती है कि हम कार के में हवा है कि नहीं, पानी है कि नहीं, तेल है कि नहीं इत्यादि। तो दोनों ही तरफ चेतना रहती है, लेकिन आसक्ति कार्य में रहती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि दोनों ही तरफ चेतना रहती है। कार के बारे में भी वो व्यक्ति सोचता है, समझता है कि कार मुझे ठीक से चलानी है तो उसलिए ठीक से उसके रखरखाव होना चाहिए, लेकिन उसकी आसक्ति अपने कार्य के ऊपर होती है। ऐसे ही भक्त भी नियमित जीवन जीते हैं ताकि उनका शरीर ठीक से चले, लेकिन आसक्ति कृष्ण की सेवा में होती है, ना कि इंद्र तृप्ति में। और भौतिक जीवन में व्यक्ति केवल अपने को शरीर मानकर शरीर को बढ़िया से रखता है ताकि शरीर का भोग करे, और शरीर की इंद्रियों से द्वारा जो भोग करता है इसके द्वारा वो सोचता है कि वो सुखी हो जाएगा। और ये पूरी तरह से असंभव है, क्योंकि दुख की योनि, दुख का जो स्रोत है वो इंद्रिय तृप्ति है। तो इस चीज को भगवान ने बता रहे हैं कि अगर हम संयमित जीवन जीते हैं तो इस शरीर में रहते हुए भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्ण।